अध्याय 24 फसह का पर्व। यह अध्याय निर्गमन 11-12 आयत 1-32 पर आधारित है। जब इज़राइल के छुटकारे की मांग पहली बार मिस्र के राजा के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी, उस समय सबसे भयानक विपत्ति की चेतावनी भी दे दी गई थी। मूसा को निर्देशित किया गया था कि वो फिरौन से कहे, यहोवा यों कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा पहलौठा है, और मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे पहलौठे को घात करूंगा। हालांकि मिस्रियों द्वारा तिरस्कृत इसराइलियों को परमेश्वर का आदर प्राप्त था, उन्हें उसकी व्यवस्था के संग्रहालय होने के लिए अलग किया गया था। जैसे कि पहलौठे का स्थान भाइयों में श्रेष्ठ होता था, उसी प्रकार इसराइलियों को मिले हुए विशेष आशीर्वाद और विशेषाधिकारों के कारण वे दूसरे राष्ट्रों में प्रतिष्ठित थे। जिस दंडाज्ञा की मिस्र को चेतावनी दी गई थी, वो आने को थी। परमेश्वर दया करने में सहनशील व उदार है। अपने ही स्वरूप में बनाए गए प्राणियों के प्रति वो नम्रतापूर्वक व्यवहार करता है। यदि फसल के व अपने पशुओं के नष्ट होने पर मिस्र ने पश्चाताप किया होता, तो बच्चों को मारा नहीं जाता। लेकिन राष्ट्र ने पवित्र आज्ञा का जिद में आकर प्रतिरोध किया, और अब निर्णायक वार होने को था। मूसा को मृत्यु की पीड़ा में भी फिरौन की उपस्थिति में प्रकट होने को मना किया गया था, लेकिन विद्रोही सम्राट के पास परमेश्वर का अंतिम संदेश पहुंचाया जाना था, और फिर से मूसा उसके सम्मुख ये भयानक सूचना लेकर पहुंचा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मिस्र देश के बीच में जाऊंगा। तब मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इसराइलियों के बीच यहोवा ने अंतर रखा है। तब तेरे सब कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करेंगे और कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और मैं उसके पश्चात निकल जाऊंगा। इस दंडाज्ञा के क्रियान्वयन से पूर्व परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को मिस्र से उनकी निकासी से संबंधित विशेषकर आने वाली विपत्ति से उनके संरक्षण हेतु निर्देश दिए। प्रत्येक परिवार को अकेले या दूसरों के साथ मिलकर एक निर्दोष बकरी के या भेड़ के बच्चे को बलि करके कठिंजर जूफे के गुच्छे से उसके लहू को घर के द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर छिड़कना था, ताकि मध्य रात्रि को आने वाला विनाश का स्वर्गदूत उस घर में प्रवेश न करे। रात को उन्हें मांस को आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाना था, जैसा मूसा ने कहा, कमर बांधे पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फूर्ती से खाना, वो तो यहोवा का पर्व होगा। परमेश्वर ने घोषणा की, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वो विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। इस महान छुटकारे की स्मृति में इसराइल के लोगों द्वारा व आने वाली पीढ़ियों में भी उस पर्व को मनाया जाना था। वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व जैसे मनाना। वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि मानकर पर्व माना जाए। आने वाले वर्षों में भी इस पर्व के मानने के समय उन्हें अपने बच्चों को इस महान छुटकारे की कहानी को अपने बच्चों के लिए दोहरानी थी, जैसा मूसा ने कहा, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य और पशु दोनों के पहलौठे परमेश्वर के माने जाते थे, जिन्हें मोल देकर वापस खरीदा जा सकता था। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि जब मिस्र में पहलौठों को मारा गया, इसराइलियों के पहलौठों को अनुग्रहपूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन पश्चाताप की बलि की भेंट के अभाव में वे भी न्याय के अनुसार दूसरों के समान विनाश को प्राप्त होते। परमेश्वर ने घोषणा की, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इसराइलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया। गिनती 3:13। मिलाप वाले की विधि के संस्थापन के बाद पवित्र स्थान के काम के लिए परमेश्वर ने लेवी के कुल को चुना, न कि लोगों के पहलौठों को। उसने कहा, वे इसराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं, मैंने उनको सब इसराइलियों के पहलौठे के बदले अपना कर लिया है। गिनती 8:16। फिर भी सब लोगों को परमेश्वर की दया की अभिस्वीकृति में अपने पहलौठे पुत्र का उद्धार मूल्य चुकाना पड़ता था। गिनती 18:15-16। फसह के पर्व को प्रतीकात्मक व संस्मारक होना था, जो केवल मिस्र से छुटकारे की ओर ही संकेत न करे, वरन उस महानतम छुटकारे की ओर संकेत करे जो मसीह के द्वारा उसके लोगों को पाप के दासत्व से मुक्त कराकर संपन्न होना था। बलिदान का मेमना परमेश्वर के मेमने का प्रतीक है, जिसमें हमारे उद्धार की अकेली आशा है। पहला कुरंथियों 5:7 में प्रेरित कहता है, हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसह के मेमने का मारा जाना पर्याप्त नहीं था, उसका लहू द्वार की चौखटों पर छिड़का जाना था। इसी प्रकार मसीह के लहू की विशेषता हमारी आत्माओं में प्रयुक्त होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि वो संसार के लिए ही नहीं, वरन हम में से एक एक के लिए बलिदान हुआ। हमें प्रायश्चित के बलिदान के सद्गुण को अपना बना लेना चाहिए। लहू को छिड़कने के उपयोग में लाया गया कठिज्र जूफा शुद्धिकरण का प्रतीक था, जो कोढ़ियों के व मृतकों को छूने से अशुद्ध हुए मनुष्यों के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता था। भजन संहिता के लेखक की प्रार्थना में इसका महत्व ज्ञात होता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। भजन संहिता 51:7। मेमने को पूरा बिना किसी हड्डी के तोड़े हुए पकाया जाना था। इसी प्रकार परमेश्वर के मेमने की भी, जिसे हमारे लिए बलिदान होना था, एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जानी थी। यूहन्ना 19:36। ये मसीह के बलिदान की संपूर्णता का प्रतीक था। मांस का सेवन किया जाना था। ये पर्याप्त नहीं है कि हम अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह पर विश्वास रखें। उसके वचन के माध्यम से हमें परमेश्वर से लगातार आध्यात्मिक शक्ति और पुष्टिकारक पदार्थ ग्रहण करते रहना चाहिए। मसीह ने कहा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यूहन्ना 6:53-54। और इसका अभिप्राय समझाने के लिए उसने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना 6:63। यीशु ने अपने पिता की व्यवस्था को स्वीकार किया, अपने जीवन में उसके सिद्धांतों को अपनाया, उसकी भावना को प्रकट किया और हृदय में उसकी परोपकारी सामर्थ्य को दिखाया। यूहन्ना 1:14 में यूहन्ना कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। मसीह के अनुयायियों को उसके अनुभव के भागीदार होना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर अपनाना चाहिए, ताकि वह हमारे कार्यों और जीवन की प्रेरणादायक शक्ति बन जाए। मसीह के सामर्थ्य से उन्हें उसके स्वरूप में परिवर्तित होना चाहिए और उसकी पवित्र विशेषताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के पुत्र के मांस को खाना और लहू को पीना चाहिए, वरन उनमें जीवन नहीं। मसीह के काम और आत्मा उसके अनुयायियों के काम और आत्मा बन जाना चाहिए। मेमने को कड़वी बूटियों के साथ खाया जाना था। इसी प्रकार हमें मसीह के लहू और देह का सेवन अपने पापों के कारण हृदय के प्रायश्चित के साथ करना चाहिए। अखमीरी रोटी का प्रयोग किया जाना भी अर्थपूर्ण था। फसह की विधि में यह स्पष्ट रूप से आज्ञा दी गई थी कि पर्व के दौरान घरों में खमीर का होना निषिद्ध था और यहूदी इस नियम का सख्ती से पालन करते थे। इसी प्रकार मसीह से जीवन और पौष्टिक पदार्थ पाने वालों में पाप का खमीर दूर कर दिया जाना चाहिए। कुरंथियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु निष्कपटता और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। पहला कुरंथियों 5:7-8। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व बंधकों को संपन्न होने वाले महान छुटकारे में विश्वास दिखाना था। उनके घरों पर लहू के चिन्ह का लगाया जाना आवश्यक था। उन्होंने स्वयं को व अपने परिवारों को मिस्रियों से अलग करना था और अपने अपने घरों में इकट्ठा होना था। यदि इसराइलियों ने दिए गए निर्देशों के किसी भी विवरण को अमान्य ठहराया होता या मिस्रियों से अपने बच्चों को अलग न किया होता, यदि उन्होंने मेमने को तो मारा होता पर उसके लहू को द्वार की चौखटों पर नहीं लगाया होता, या वे अपने घरों से बाहर निकल गए होते, तो वे सुरक्षित न होते। उन्होंने ये विश्वास कर लिया होगा कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो अनिवार्य था, लेकिन उनकी सच्चाई ने उन्हें न बचाया होता। जिन्होंने भी परमेश्वर के निर्देश की अवहेलना की, उन्हें विनाशक के हाथों अपने पहलौठों को खोना था। आज्ञा का पालन करके लोगों को उनके विश्वास का प्रमाण देना था। इसी प्रकार जो भी मसीह के खून की सामर्थ्य से बचाए जाने की आशा करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अपने उद्धार की प्राप्ति में उन्हें स्वयं भी कुछ करना था। हालांकि केवल मसीह ही हमें पाप की दंडाज्ञा से छुटकारा दिला सकता है, किंतु हमें पाप से हटकर आज्ञाकारिता की ओर मुड़ना होगा। मनुष्य अपने कामों के द्वारा नहीं, वरन अपने विश्वास के द्वारा बचाया जाता है, लेकिन उसका विश्वास उसके कामों से प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर ने पाप के कारण अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया। उसने जीवन के मार्ग और सत्य के प्रकाश को प्रकट किया। उसने सुविधाएं, विधियां और विशेषाधिकार दिए हैं, और अब मनुष्यों को इन सुरक्षा माध्यमों के साथ सहयोग करना चाहिए। उसे परमेश्वर द्वारा दी गई सहायता का प्रयोग करना चाहिए और उसका आभारी होना चाहिए और सब पवित्र आज्ञाओं का पालन और विश्वास करना चाहिए। जब मूसा ने उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर के प्रयोजनों को इसराइल के लिए दोहराया, तो लोगों ने दंडवत करके उसकी आराधना की। मुक्ति की आनंदमयी आशा, उनका उत्पीड़न करने वालों पर होने वाली दंडाज्ञा का ज्ञान, उनकी शीघ्र निकासी से संबंधित परिश्रम, ये सब उस समय अनुग्रहपूर्ण उद्धारकर्ता के प्रति कृतज्ञता में भुला दिए गए। कई मिस्री इब्रियों को परमेश्वर का एकल सच्चा परमेश्वर होने में विश्वास हो गया था, और ये लोग विनाशक स्वर्गदूत के आने के समय इसराइल के घरों में आश्रय पाने की अनुमति की भीख मांगने लगे। उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया गया और उन्होंने शपथ ली कि उस समय से याकूब के परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके लोगों के साथ मिस्र से चले जाएंगे। इसराइलियों ने परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया। शीघ्रता व गुप्त रूप से उन्होंने निकासी की तैयारियां की। परिवारों को इकट्ठा किया गया, फसह के मेमने को मारा गया, मांस को आग में भूना गया और अखमीरी रोटी और कड़वी जड़ी बूटियों को तैयार किया गया। घराने के धर्मगुरु और पिता ने द्वार की चौखट पर लहू को छिड़का और अपने परिवार सहित घर के अंदर हो गया। शीघ्रता से और चुपचाप फसह के मेमने को खाया गया। आदरपूर्ण भय के साथ लोगों ने प्रार्थना की और शक्तिशाली पुरुष से लेकर छोटे बच्चे तक सबसे ज्येष्ठ के हृदय को अवर्णनीय भय से धड़कते हुए देखा। उस रात को होने वाले भयानक आक्रमण का विचार करते हुए माताओं ने अपने प्रिय पहलौठों को अपनी बाहों में पकड़ लिया, लेकिन इसराइल के किसी भी घर पर मृत्यु देने वाला स्वर्गदूत नहीं आया। लहू का चिन्ह, उद्धारकर्ता द्वारा रक्षा का चिन्ह उनके द्वारों पर था और विनाशक ने वहां प्रवेश नहीं किया। आधी रात को मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई मरा न हो। देश के सभी पहलौठे, मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर काल कोठरी में पड़े हुए बंधक तक और पशुओं के विस्तृत राज्य में प्रत्येक घराने का घमंड समाप्त कर दिया गया। रोने वालों की चिल्लाहट और सिसकियों से वातावरण गूंज उठा। पीले पड़े चेहरों और कपकपाते हाथ पैरों के साथ राजा और दरबारी इस हावी होने वाले भय से हक्का बक्का रह गए। फिरौन को अपने ही कथन का स्मरण हुआ, यहोवा कौन है जो मैं उसकी बात सुनूं और इज़राइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और चुनौती देने वाला घमंड मिट्टी में मिल गया। उसने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इज़राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। राजसी सलाहकारों और लोगों ने भी इज़राइलियों को जाने के लिए कहा। वे बोले, देश से झटपट निकल जाओ, हम तो सब मर मिटेंगे।